اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب، آپ فرمائیے، کیا سوال ہے؟
میں نے وہ اس میں ایک تو میں نے آپ سے وہ کہنا ہے کہ جہاں پہ یہ نہیں ہوتا کشش ثقل کا نہیں ہوتا، وہ کلر اور وہ جو حواس کا ہے، یہ جو صحیح کلر نظر آتے ہیں، یہ کس طرح کے کلر ہوتے ہیں جو حواس کے ساتھ اپنی نظر یا لہریں اور اس میں آتے ہیں؟ مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی.
چلے میں عرض کرتا ہوں. جی کوئی اور سوال؟ ہیلو.
جی سر میرا سوال ہے،
ارشاد.
کہ قرآن پاک نے ہم نے پڑھا ہے کہ مطلب وقت کے تین ہیں، ہین، دہر اور اثر. ان کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. اور ایک قلب کے بارے میں، یعنی دل کے بارے میں، قلب ہے اور صدر ہے اور ایک ہے
فواد.
فواد ان کے بارے میں بتا.
چلیں یہ میں دونوں سوالوں کو ایک ساتھ مطلب ہے عرض کرتا ہوں ان کے جواب، ٹھیک ہے؟
جی
یہ اتفاق کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے، یہ اصل میں چار ہیں. پہلا ہے دہر، دوسرا ہے وقت، اور تیسرا ہے اثر، اور چوتھا ہے ہین. یہ ٹائم کے چار زون بتائے گئے ہیں قرآن حکیم میں. کلیئر ہو گئی بات؟ انہی چار چیزوں کو ہم جب سمجھتے ہیں حواس کے ذریعے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم رنگینی کو محسوس کرتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ ہے یک رنگی، پھر ہے اوپر بے رنگی، اور دہر کے درجے پہ جا کے یہ سب ورائے بے رنگ ہو جاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ یہ چار چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب انہی کو آپ اطلاع کہتے ہیں، انہی کو ہم خیال کہتے ہیں، پھر انہی سے نیچے یہ تصورات بن جاتے ہیں، اور پھر اس سے نیچے آ کے یہ احساسات بن جاتے ہیں. یہ چاروں باتیں مطلب ہے ترتیب سے لکھ لیجئے اپنے پاس، میں عرض کر رہا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ دہر، دیکھیں اللہ نے جو پورا پروگرام سوچا وہ سارا، اس کو جو ٹائم چاہیے، جتنا بھی ٹائم لگے گا اس کو لگا، جو لگ چکا اور جو آئندہ لگے گا، وہ سارا ٹائم کا پھیلاؤ جو ہے اس کو اللہ نے دہر کہا ہے. وہ اللہ کے ذہن میں. تو دہر کیا ہوا؟ وہ جو اللہ کا ذہن ہے، اسی کو ورائے بے رنگ کہا. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد جب اسی کو اطلاع کہا، اسی چیز کو اطلاع کہا، اس کے بعد جب آپ نیچے اترتے ہیں، اطلاع جب ذہن میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ خیال بن جاتا ہے، جب ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اطلاع کا نام خیال بن جاتا ہے. یعنی ورائے بے رنگ سے آپ بے رنگی میں داخل ہو گئے، یا آپ دہر سے وقت میں اتر آئے. وقت کہتے ہیں ایک کائنات کو محیط وقت، یعنی اللہ کے ذہن میں اربوں سینکڑوں مطلب کتنی کائناتیں ہیں، ان میں سے دیکھیں نا 30 کروڑ لوہے محفوظ، تو گویا اگر آپ پھر تو 30 کروڑ کائناتیں تو مانے نا، اگر ہر لوہے محفوظ ایک پوری کائنات کو ہینڈل کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ 30 کروڑ کائناتیں ہوئی. اب یہ 30 کروڑ کائناتوں کو جو ٹائم محیط ہے، اس کا نام ہے دہر، اور جو ایک کائنات کا وقت ہے، اس کو وقت کہا گیا ہے. इसके लिए हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ली मा अल्लाह वक्त, कि मैं अल्लाह के साथ वक्त में शामिल हूँ, या मैं अल्लाह के साथ हूँ वक्त में, यानी इस कायनात का जो हजूर अलैहिस्सलाम का कंट्रोल है वो इसके बारे में बता रहे हैं। अब इसी कायनाती सत्ता के वक्त को हमने क्या कहा, बेरंगी, और इसी को मैंने क्या कहा, यह ख्याल का दर्जा है। अब आपको समझ आ रहा है मैंने क्यों कहा कि यह आपको कंपैरेटिव वर्स किया चल कर देता हूं, ताकि ये आपको इनको आपस में लिंकअप करना आ जाए। ठीक हो गया, यहां तक बात पल्ले पड़ गई कि नहीं?
जी जी।
अब उसके बाद वक्त से नीचे शुरू होता है असर। असर हमने सिर्फ शाम 4 बजे की अजान का या नमाज का वक्त जो है 4-5 बजे के करीब, उसका नाम रख दिया नमाज असर का। असर अल्लाह रब्बे करीम कह रहे हैं कायनात में मौजूद हैं अनवा। क्या हैं? अनवा, नौ। नौ कहते हैं जैसे आदम एक नौ है, कुत्ता एक नौ है, बकरी एक नौ है, इसी तरह आम एक नौ है, बेर एक नौ है, इसी तरह शलजम एक नौ है, गाजर एक नौ है। नौ समझ आ गई? चीज मतलब किस्म, तखलीकात की किस्म का नाम है नौ। अब होता यह है कि जो पूरी नौ को, यानी जैसे हजरत मतलब आदम से लेकर, हजरत आदम से लेकर जब आखिरी इंसान दुनिया में आएगा, उस वक्त तक का सारा टाइम पीरियड जो है वो बनी नौ आदम के लिए असर का दर्जा रखती है। अब जमीन एक कुर्रा है, इस कुर्रे पे जितना वक्त गुजरेगा वो सारे का सारा असर कहलाएगा। अब ये क्या हुआ, ये असल में यकरंगी का आलम है। ये क्या है, ये असल में तसव्वुरात का आलम है। यानी अगर हम इसे एक तरह से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि वराए बेरंग जो है वो बेरंगी में ढला, वहां से वो नीचे उतरा तो वो यकरंगी में ढला और उससे नीचे फिर रंगीनी में ढल गया। ये चार दर्जे मैंने बताए, यही चार दर्जे मैंने आपको कहा कि तला, ख्याल, तसव्वुर और एहसास है, और इन्हीं चार के पे जो टाइम की गिरफ्त है उसका नाम दहर, वक्त, असर और फिर हीन है। अब हीन क्या है? हीन कहते हैं एक फर्द, जैसे आप एक फर्द हैं, बनी नो आदम में से आप एक फर्द हैं, मैं एक फर्द हूं, हमारे जितने ये पार्टिसिपेंट्स हैं सारे बहन भाई, हर बंदा अपनी जगह एक फर्द है, हाँ या नहीं? अब ये एक फर्द पे जो वक्त है, यानी एक फर्द का जो वक्त है उसकी पैदाइश से लेकर, बल्कि उसके कंसीव होने से लेकर उसके मरने तक, ये सारा वक्त हीन कहलाता है। और हजूर कलंदर बाबौलिया ने बताया कि ये असल में खिला है जिसके अंदर इत्तलात आ रही हैं। अब समझ आ गया मैंने क्यों दोनों बातों को साथ लिया, कि इत्तलात का निजाम चल रहा है, जब वो अल्लाह के जेन में है तो उस पर दहर के यूनिट लागू होंगे, जब वो नीचे उतरेगा वराए बेरंगी से वो बेरंगी में तहलील होगा, यानी कि इत्तला जब ख्याल बनना शुरू होगी तो उस पर वक्त का वक्त लागू हो जाएगा, तब से वक्त जारी हो गया या उस पर लागू हो गया, यानी वो कायनात को पूरी कायनात को मुहित जो वक्त है। फिर जो उसके अंदर नौए हैं उन अनवा का वक्त असर कहलाया, इसी को उधर ख्याल के नीचे देखें तो तसव्वुर दिखता है, यानी ये तसव्वुरात शुरू हो गए। नौ बनने का मतलब है कि कायनात में तसव्वुरात के हदो खाल बन गए। ये सारी एक ही बात है, हम लोग इसको चूंकि टुकड़ों में समझे हुए हैं और हमें सिरा नहीं मिल रहा कि इसको लिंकअप कैसे करना है। तो ये जो बात मैंने अर्ज की कि आप इन दोनों बातों को, हालांकि देखें दो मुख्तलिफ बंदों ने दो सवाल किए, और करें जरा इस बात पे, मैंने आपके दोनों के सवालों को आपस में कनेक्ट करके दिखा दिया कि किस तरह इनका जवाब आपस में लिंक्ड अप है, कि वराय बेरंग से, अब इस वराय बेरंगी को एक आम मिसाल से समझ लीजिए, ये वराय बेरंगी, बेरंगी, फिर यक रंगी और रंगीनी, ठीक है, बाकी इस्तलाहात जो हैं वो आप उस पर लागू करके देख लीजिएगा। मसलन आप अपने इर्द गिर्द इस वक्त नजर दौड़ाएं, सबको अपने इर्द गिर्द क्या दिख रहा है, चीजें दिख रही हैं, क्यों दिख रही हैं, क्यों दिख रही हैं, रंगों की वजह से, हर चीज इसलिए दिख रही है कि रंग है उसमें, जो चीज कोई रंग नहीं रख रही वो आपको नजर भी नहीं आ रही, जैसे ये हवा, और करें हवा नजर आ रही है, इसलिए कि हमारी आंख में इतनी सकत नहीं है कि हम हवा का रंग देख सकें, वरना है तो, क्योंकि महसूस तो होती है, तो कोई चीज है तो सही लेकिन दिखती नहीं है, तो हम चीजों को देखते हैं उनके रंगों की वजह से। अब ये रंगीनी का आलम हो गया, या आलम में नासूत हो गया, या आलम में रंगो बू हो गया, वाजे हो गई बात। अब आप देखें, जरा सा गौर करें, जरा सा गौर करें कि ये सारे रंग क्यों दिख रहे हैं हमें, हमें ये सारे रंग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बल्ब की रोशनी पड़ रही है इन पे। अगर आप लाइट ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें, और खिड़कियों पे पर्दे पड़े हों, क्या होगा, आपको कोई रंग दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये रोशनी यकरंगी है, ये रोशनी में एक ही रंग होता है, सारे एक ही रोशनी है ना, तो एक ही रंग है, वो आगे चीजों पे पढ़कर तो रंगीनी में ढल जाती है, यानी ये रंगीनी से ऊपर है यकरंगी। और ये मिसाल देख लीजिए, आपके सामने ये एक ही बल्ब की रोशनी है जिससे सारा कमरा मुनव्वर है और उसके रंग दिख रहे हैं, तो रंगों की असास क्या हुई, रंगों की बुनियाद हुई यकरंगी, ठीक है, या रंगों की बुनियाद हुई रोशनी, ठीक है। अब रोशनी की बुनियाद क्या है, तो ये जो आपका बल्ब जल रहा है, अगर आप इसका स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, स्विच में क्या चीज है, करंट, मतलब है ये रोशनी जो है ये करंट की वजह से जनरेट हो रही है, तो करंट क्या हुआ, ये बेरंगी हो गया, यानी चीजें आपको रंग की वजह से दिख रही हैं, ये रंग आपको रोशनी की वजह से दिख रहे हैं, रोशनी जो है करंट की वजह से, और ये करंट बेरंगी है, लेकिन इस करंट को बनाया किसने, तो जिसने बनाया वो ज़हन, जिसने जनरेटर बनाया, जिसने तारों का निजाम बनाया, जिसने ग्रिड स्टेशन बनाया, जिसने आपके घर के बाहर का ट्रांसफार्मर या एमटी बनाई, और आपके मीटर लगा के तार के जरिए आपके घर तक बिजली पहुंचाई, वो सौरा जहन क्या है, वो है वराए बेरंग। ये मिसाल आपको एक मादी जोन में मैंने मिसाल दी है, ताकि आप इस मिसाल पे जब गौर करेंगे तो आपको अल्लाह का जहन समझ आना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या कहा था,
ये वराए बेरंग जो है, ये अल्लाह ताला का जहन आ जाते हैं
जी, वराए बेरंगी का मतलब है जहन, वरा कहते हैं ऊपर,
अल्लाह ताला को कहेंगे कि उनका जहन ऐसा है।
आप मेरी बात सुनने पे तवज्जो दें, अपनी उछल कूद पे जरा काबू पाएं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वरा कहते हैं ऊपर को, जो सबसे ऊपर है, ऊपर कौन है,
अल्लाह
की जात, ठीक हो गया। तो आप जब वराए बेरंगी को महसूस करना सीखेंगे, आज तो आपने लफ्ज सुना है, आज तो आप इसे आशना होना शुरू हुए हैं, जब आप इसे महसूस करने लगेंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे कि हमारी हिसियात ने काम करना शुरू कर दिया। जी और कोई सवाल? ये बहुत हैवी सवाल था, इतनी मतलब मैं पूरी लौह कलम का खुलासा मुझे आपके सामने पेश करना पड़ गया।
सही बात है
जी।
और ये
अब आप इस पे
सर इसकी वो मिसाल भी वो हम स्कूल में करते थे ना तजर्बा, मंशूर के अंदर से लाइट गुजारते थे तो आगे से कलर आती थी रोशनियां।
क्या बात, मेरी
एक रोशनी
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये देखें ये तजर्बा जो है वो इस बात की सनद है। किस चीज की? के आपके जहन ने माशाल्लाह गौर करना शुरू किया और आपका जहन इससे मिलती जुलती बात की तरफ गया। आपको समझ आ गई कि ये जो इसने बात कही है इसमें दम है। वो मैंने तजर्बा किया था, वो एक यकरंगी से रंगीनी पैदा होते देखी थी मैंने। ये बारिश के कतरों में से जब पानी गुजरता है तो बारिश के कतरे उस प्रिज्म का काम करते हैं। ये जो आपके बॉडी में सेल्स हैं, इस सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम रंगों को कहते हैं, रंगीन बॉडी, बॉडी ऑफ कलर्स। ये साइटोप्लाज्म रोशनी को डिस्पर्स कर देता है कलर्स में। ये आपको पता ही नहीं किसी को, ये आपके बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए उनको नहीं मालूम। मैंने कहा ना कि आप सुन के इस पे तवज्जो कीजिए और इस पे गौर कीजिएगा बाद में, ठीक है?
सही बात है।
देखे ना आप मुझसे जब पूछते हैं जी तो आप अपने सवालों की खुदालें, फावड़े और बेलचे और कसियां ते कईयां लैके मतलब खुदेड़े, जो भी आपको पूछना है जरूर पूछे। इससे आपका जहन खुलेगा। जब आप मेरी जो मैं जवाब अर्ज करूंगा उस पर आप तफक्कुर करेंगे, उस पर गौर करेंगे तो आपके जहन की कई जाले हटेंगे। आपको ये पैटर्न समझ आएगा कि मुर्शिद करीम ने क्या इंतजाम किया है, किस तरह से हम उनकी बातों को समझने के लिए कोशां हैं। अब देखे ना मैंने कोई बात अपने पास से तो नहीं अर्ज की, जो कुछ मुर्शिद करीम ने बताया वो मैंने आपको जोड़ के लिंक अप करके सुना दिया। यानी मैंने आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर लिए, ठीक हो गया ना?
सही बात है। अभी हम इनके बस बहुत गौर कर करके आपको पैसे नहीं के करेंगे, आराम से बैठ के खूब गौर करेंगे
जी, माशाल्लाह।
फिर जेन में कोई ना कोई बात।
हाँ जी, तो इसी तरह होगा ना, जब ये पूरा नक्शा वाजे होता चला जाएगा तो आपके जेन में क्या होगा, गहराई पैदा होगी। जब गहराई पैदा होगी तो शांति आएगी। जाहिर है समुन्द्र के ऊपर सतह पे लहरें बहुत होती हैं, नीचे गहराई में उतर गए तो वहां तो लहरें नहीं होती। जी और कोई सवाल?
बोला क्या था, कम होती है अब
जी।
ये शेयर किया आपने कि ये जन्नत यानी एलियन है, ह्यूमन अर्थ पे जो है,
मतलब है ये देखे कि एक इंसान की सोच जो के मादी जोन में है जी, उसने इसको साइंटिफिक तरीके से साबित करने की कोशिश की कि इंसान जन्नत से आया। उसकी समरी सिर्फ इतनी सी है। ये बात तो कुरान कह रहा है कि भाई आपको तखलीक किया, अल्लाह ने आपको जन्नत में रखा, आपको वहां से आपने हमाकत की, गलती की, बगावत की, शैतान के बहकावे में आए तो उठा के आपको नीचे फेंक दिया। साफ तो बताया कुरान ने, ये आज की बात है। कुरान 1400 साल पहले कह रहा है, वो नहीं आपको इम्प्रेस कर रही। और एक आज का साइंटिस्ट जिसने यहाँ से नकल मारी है वो आपको इम्प्रेस कर गया। ये क्या बात हुई?
सही बात है।
देखे ना, वो साइंसदान वही कह रहा है ना जो कुरान आज से 1500 साल पहले लगभग कह चुका है, हाँ या नहीं? अब वो साइंसदान कह रहा है तो उसका बड़ा असर है हम पे, बड़ा रोब है, और वो जो कुरान बता रहा है वो हमने पढ़ना गवारा ही नहीं किया। ये तो हाल है हमारा।
वो ना जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं आजकल के, उनको भी
आप उनको नहीं, उनको नहीं मातून कर सकते, इसलिए कि ये हमारा अपना कसूर है। गौर व फिक्र हर बंदे ने इंडिविजुअली खुद करना है, ये अल्लाह का कानून है। आपके गौर व फिक्र का मुझे फायदा नहीं है, मेरे गौर व फिक्र का आपको कोई फायदा नहीं है। जब तक आप खुद देखे ना, आपने ये सारी बात सुनी, आप खुद गौर ना करें तो ये सब क्या हुआ? ये वक्त गुजर गया बस, और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कि बात पल्ले अगर नहीं पड़ी तो क्या हुआ?
अगर हम जो पूछ भी लेते थे ना कुछ तो
भाई, उनको नहीं पता तो आप उनको देखे ना, एक बंदे को नहीं पता तभी तो वो उन्होंने आपको आज तक कभी किसी ने इनकरेज किया कि सवाल पूछे हैं जी?
ना, जी कभी भी नहीं।
आप सवाल पूछें तो अगला हमारे टीचर्स जो हैं वो डांट पिला देते हैं, झाड़ देते हैं, मारते हैं बच्चे को कि तू सवाल क्यों पूछता हमसे। तो क्या मतलब हुआ? तो ये मुआशरती तर्जों से बच के निकलना है या नहीं? आप उन्हीं के उन्हीं का मातम करते रहें तो छोड़ दें उसको, वो तो जो होना था हो चुका ना, बस आप अपनी अब तवज्जो को अपने अंदर समेट लें। बुरी बात, बुरी बात, कभी ऐसी बुरी बात नहीं कहते। देखें टाइम जाया हुआ, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, टाइम तो अल्लाह है, अल्लाह जाया कैसे हो सकता है? इसमें कोई हिकमत थी। आप ये अप्रोच अपनी बदलें, अपनी हमारी जो अप्रोच है ना, हर चीज पे हम शिकवा सन जाएं, नहीं शुक्र गुजार बंदे बन जाएं। आप शुक्र करें कि अल्लाह ने ये मौका अता कर दिया हमें, ये क्यों नहीं करते? नेगेटिव सोचना जो है वो आदत बनी हुई है हम लोगों की, हमारी थिंकिंग में नेगेटिविटी बेतहाशा इतनी कि और कुछ नहीं तो हम अपने बड़ों को ही बुरा कहने बैठ गए, तौबा नाउज़ुबिल्लाह हैं। हालांकि बुजुर्गों ने कहा भी कि खताए बुजुर्गां गिरफ्तन खतास्त, कि बुजुर्गों की खता पकड़ना ही खता है। यानी गलती है, यानी बुजुर्गों की गलती को पकड़ना सबसे बड़ी गलती, इसलिए कि आपका ध्यान गलती में घुस गया, अब आप खुद भी गलती कर रहे हैं। लिहाजा किसी की गलती पे नजर ही ना डालें ताकि आप अपनी गलतियों पे तवज्जो दें, उनको दुरुस्त करें। ये अप्रोच होती है रूहानी बंदे की। देखे ना, आप हजूर मुर्शिद करीम की किसी बात में मुझे कोई इस तरह की नेगेटिविटी दिखा दें, हजूर कलंदर बाबा औलिया की किताब में कोई जुमला ऐसा बता दें जो नेगेटिविटी की तरफ जाता हो, क्या मतलब? जो बंदा हकीकत जानना चाहता है ना, वो अच्छे बुरे के चक्कर से निकल जाता है। क्या अर्ज किया मैंने? जो बंदा हकीकत जानना चाहता है वो अच्छाई और बुराई के जोन से बाहर आ जाता है। उसको ना कोई चीज अच्छी दिखती है ना बुरी दिखती है, बस जो चीज जैसी है वैसी दिखती है। ठीक हो गया?
ठीक हो गया सर। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी जन्नत है और नेगेटिविटी दोजख है।
आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। 16 आने माशाल्लाह, बिल्कुल सही, यही नतीजा निकलता है ना। देखें कुरान ने असाबुल यमीन और असाबुल शुमाल कहा, दाएं वाले और बाएं वाले। इसी को दाएं वाले का मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग रखना और बाएं वाले का मतलब है नेगेटिव थिंकिंग रखना। अब तीसरी जो थिंकिंग है वो जो आप कल्ब और फवाद और सदर वगैरह पूछ रहे थे, अब उसकी तरफ आ जाइए। ये तीन किस्म के थिंकिंग पैटर्न है। क्या हैं? तीन किस्म के थिंकिंग पैटर्न्स हैं। एक दाई तरफ वाला जो जन्नत में जाएगा, एक बाई तरफ वाला जो जहन्नम में जाएगा, और एक जो साबिकून है जो सीधा चलेंगे। सूरह वाकया में ये बात अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाई के तुम तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे, दाएं वाले, बाएं वाले और सीधा जाने वाले। यानी इसकी मिसाल या तमसील ये बनी, तस्वीर ये बनी कि आप अगर दाई तरफ मुड़ जाएंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। वो जन्नत भी अल्लाह से दूर ही है क्योंकि अल्लाह तो सामने बैठा हुआ है। तो असल में तीन तर्ज़े फिक्र हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव और एक है न्यूट्रल, गैर जानिबदार तर्ज़े फिक्र। जो गैर जानिबदार तर्ज़े फिक्र है वो आपको सीधा अल्लाह तक ले जाएगी, क्योंकि अल्लाह की अपनी तर्ज़े फिक्र गैर जानिबदार है। देखे ना, अल्लाह किसी चीज को अच्छा बुरा नहीं कह रहा। जो चीज मेरे और आपकी सकत से ज्यादा है, जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, जिसमें करंट की वोल्टेज मेरी सकत से ज्यादा है, उसको मना कर दिया अल्लाह ने कि भाई ये जाया होता है तुम्हारी एनर्जी, ये नहीं करो। हैं? अब देखे ना, जो चीज आम बंदे के लिए मना है, वो हजरत मूसा के किस्से में खिजर ने वही काम किए। क्या मतलब हुआ कि उस बंदे की सकत बहुत थी, वो बराए रास्त अल्लाह से कनेक्टेड था। जी हाँ, वो हजरत मूसा ने अल्लाह से यही तो कहा कि जितना आप मुझसे प्यार करते हैं, जितना इल्म आपने मुझे अता किया है किसी और को भी दिए, तो अल्लाह ने कहा कि तुम क्या बेचते हो, मेरे जब बंदों में से एक बंदे से जाके मिल के देखो तुम्हें समझ आ जाएगी।
अभी देखे ना, उन्होंने काम भी ऐसे किए, कश्ती में सुराख कर दिया, बच्चे को मार दिया, वो हमारे जैसा बंदा वैसे ही उछल जाएगा, भी ये क्या हो गया।
मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखे, अब ये बातें आपके और मेरे लिए क्यों मन है, हमारे शऊर की सकत नहीं है कि हम उसकी हिकमतों को समझ के करें। जब किसी की हिम्मत और सकत बढ़ जाए तो उसका जहन, अब देखे ना, बाज लोग नशा करते हैं, ठीक है, बाज लोग अगर नसवार की चुटकी मुंह में रख लें तो उनको चक्कर आ जाएगा, लेकिन बाज लोग अफीम खा जाते हैं, उनको कोई असर ही नहीं होता। वो ना खाएं तो उनको नींद नहीं आती। क्या मतलब कि उनकी वो एक बॉडी का फ्रेम जो है उसमें ढल गया। जी, और कोई सवाल?
सर, मेरा एक सवाल है।
इरशाद,
when Allah subhanahu wa ta'ala created a baby perfectly, then why are some babies are imperfect when they were born?
बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है आपने। देखे, मैं अर्ज करता हूँ, ये कसूर होता है माँ का, ये उसके माँ के शऊर में कमजोरी की वजह से बच्चे या तो डिफॉर्म्ड होते हैं या कमजोर होते हैं। अब्बा ने बताया था मुझे कि 8 साल की उम्र तक बच्चा माँ के शऊर पे चलता है, अंदाजा करें। बात यह है कि हमें जब ये हकायक मालूम होंगे, माँ को पता हो कि भी मेरे शऊर की कमजोरी आगे मेरी नस्ल में मुंतकिल होके उसको खराब कर सकती है, तो या वो बच्चा ही ना जने या वो अपने शऊर को डेवलप करे। उसने अपना शऊर डेवलप नहीं किया, नतीजा तक क्या हुआ भाई? देखो ना, एक सांचे में आप एक एनके बनती देखी है आपने, एनक बनती है सांचे में। अब अगर सांचा टेढ़ा है तो उसमें डालूंगा तो जो भी एनक बनेगी वो टेढ़ी होगी या नहीं?
टेढ़ी होगी।
तो माँ क्या है? माँ उसकी डाई है, डाई नहीं, डाई। डाई जिस वो सांचा जिसमें बच्चा बनता है, अब वो सांचा कमजोर है, सांचा टेढ़ा है, तो मुझे बताएं कि उसकी प्रोडक्ट कैसी होगी।
सर मैं माँ को भी तो नहीं पता होता ना कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है।
ये बात तो फिर आपका जहन उधर ही जा रहा है, क्या करूं मैं। देखें बात ये, मैंने आपको एक कानून अर्ज कर दिया, आपकी समझ में आया, आप गौर करें। अब वो जो माँ नहीं समझना चाहती उसको मैं तो नहीं डंडा मार के समझा सकता। अरे तो अब ना जहालत की सजा तो वो खुद भुगत रहे हैं ना। देखें बच्चा अगर डिफॉर्म्ड पैदा हुआ तो सजा किसको मिल रही है, माँ को या नहीं?
माँ को मिल रही है।
आपको समझ आया ये कवानीन, ये कानून?
जितने मेरे इस तरह के बच्चे देखे हैं ना, वो उन माँ बाप को नहीं एहसास होता कि इनका क्या वजह हो रही है। अल्लाह की मर्जी।
जी हाँ, अब ये देखें जब अल्लाह पे इल्जाम लगाएंगे तो उसकी मार अलग पड़ेगी, अपनी कमजोरी को दूर न करने की सजा अलग मिलेगी। देखे ना, कमजोर होना ही सजा है। अब एक माँ को एक बच्चा जो डिफॉर्म्ड है वो संभालना पड़ रहा है, क्या ये कम सजा है?
बहुत बड़ी सजा है।
मतलब है, मैंने बात कही, आपके जहन में वो सारी तस्वीरें गुजर गई, हाँ या नहीं?
हाँ सही बात गुजर गई है
जी। इनको गौर कीजिए इन पे। मैंने एक बात अर्ज की, देखे आप रूहानियत पढ़ रहे हैं, आप रूहानी तलबा हैं, आप सब माशाल्लाह एक रूहानी शख्सियत हैं, तो आपको कवानीन को पढ़ना है, कवानीन को समझना है, हजूर कलंदर बाबा औलिया के अलूम से आरास्ता होना है।
ठीक है।
तो इसलिए जब आप सवाल पूछते हैं तो मैं जब जवाब अर्ज करता हूँ तो उस पर जरा देखें कि मैं कोई आपके साथ मजाक थोड़ा ही कर रहा हूँ। मैंने आपको कानून बता दिया कि ये कानून है और एक जुमले में वर्ज कर दिया। क्लियर हो गई बात या नहीं?
क्लियर है सर, थैंक यू सो मच।
माय प्लेजर। तो आपने पूरा हफ्ता बस दो ही बंदों ने सवाल सोचे थे? आपकी इस हौसला अफजाई से हम खुश हुए। देखे ना, जब आदमी के विजन की धुंध छटती है तो चीजें क्लियर होने से जहन में कितनी शांति आ जाती है। और किए जी। वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब से यही बताते हैं आपस में कजनों की शादी होने से बच्चे इस तरह के पैदा होते हैं।
ये सब डॉक्टरों के ड्रामे हैं, चुप ही कर जाइए। वरना देखे ना, आज से मतलब है ये दौर से पहले तो कभी किसी ने ऐसी बात नहीं कही, वो तो होती ही शादियां खानदानों में थी। वो असल में मैं आपको इसकी रीजन बता देता हूँ कि वो ऐसा इस नतीजे पे क्यों पहुंचे हैं। यानी कि डॉक्टर इस नतीजे पे क्यों पहुंचे हैं? एक बड़ी अजीब कानूनी बात बता रहा हूँ आपको। जब आप देखें क्रॉस ब्रीड करते हैं ना, تو بچے زیادہ توانا، کیونکہ دو مختلف تہذیبیں یا دو مختلف خاندانوں کے بنے ہوئے ذہن جب ایک جگہ مکس اپ ہوتے ہیں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دوہرے شعور کا حامل ہوتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے اس کا شعور. اب کزنز چونکہ وہ ایک ہی فیملی سے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کا شعور ہوتا ہے، تو ان کا پروڈکٹ بھی انہی جیسا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال لگاؤں دینے، بہت بڑی مثال. تاج الدین بابا اولیا کی والدہ انگریز تھی.
اچھا،
اب کسی کو نہیں پتا یہ بات. وہ جب انگریزی ان کی مادری زبان تھی تو وہ جب جوش خطابت میں بات کرتے تھے تو وہ انگریزی میں گفتگو شروع ہو جاتی تھی، تو وہ لوگ کہتے تھے یہ بھی کوئی کرامت ہے. وہ اتنا بڑا ذہن کیسے بنا؟ کیونکہ ایک عرب کا بریڈ ہے اور ایک یورپ کا، تو دو بر اعظموں کا شعور اکٹھا ہو گیا. غور کریں تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ہمارا تو شعور دن بدن، بجائے شعور کو توانا کرنے کا گور بتائیں، وہ آگے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سمجھ آئی آپ کو؟
ہم نے سنا تھا کہ بابا کے لندن اولیاء نجیب الطرفین سید تھے.
جی تو بابا نجیب الطرفین سید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے والد تو سید تھے نا.
آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ یورپین تھی، تو آیا وہ
میں تاج الدین بابا اولیاء کی بات کر رہا ہوں، کلندر بابا اولیاء کی نہیں. جی اور کوئی؟ وہ جہنم پکارے گی حل من مزید، ہے کوئی اور کہ میں اسے کھاؤں؟ چلیں پھر، رہتی ہے بات. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیے. کوشش کیجئے کہ اگلا ہفتہ غور و فکر کر کے نا، یہ میں ابھی اس کی آڈیو شیئر کر دیتا ہوں، پھر اس پہ اسے بار بار سن کے تو اس پہ غور کیجئے، اگر ذہن کھلے تو ضرور پوچھئے. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. جی 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 بہن. چلیں، وہ اللہ حافظ جی.